बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है।
दोस्तों, भारतीय रेल का इतिहास जितना मजेदार है, उतनी ही मजेदार है उसकी सांस्कृतिक जीवनी। जी हाँ, भारतीय रेल की सांस्कृतिक जीवनी लिख डाली है भारत स्थित लेखक डॉक्टर अरूप के चैटर्जी ने। अरूप, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
अरूप, भारतीय रेल की सांस्कृतिक जीवनी लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली?
देखिए, सच कहूँ तो भारतीय रेल की जीवनी और उसका इतिहास मेरे दिमाग में कई वर्षों से है, लेकिन उसकी प्रेरणा मुझे भारतीय रेल से नहीं मिली। सच कहूँ तो उसकी प्रेरणा मुझे अंग्रेज रेल से मिली, क्योंकि जब मैं तकरीबन 6 या 7 बरस का था और किताबें पढ़ता था, एक अब्रिज किताब दी गई थी मुझे, मेरे पिताजी ने खरीद के दी थी, द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, सर आर्थर कोनन डॉयल, और उसमें मैं बहुत दिलचस्पी से पढ़ता था उन्हीं पन्नों को दोबारा पढ़ता था जिसमें रेल का जिक्र था। तो दो रेल के बहुत महत्वपूर्ण थीम है उस नॉवल में। एक जब सर हेनरी बास्करविल, डॉक्टर मॉर्टिमर और डॉक्टर वॉटसन जाते हैं एडिंगटन स्टेशन से डेवनशायर, और दूसरी बार जब शर्लॉक होम्स और वॉटसन जाते हैं डेवनशायर यानी कि डार्टमोर से कुंभकेसी, तो ये दो जो बहुत पिवोटल सीन्स थे उस नॉवल के, उन्होंने मुझे बहुत लुभाया। उसके तुरंत पहले ही मैंने एक बार, उससे भी छोटा था, शायद 4 या 5 बरस का था, जब बनारस स्टेशन में एक टॉय ट्रेन मैंने देखा था। तो ये दो बहुत बहुत पुरानी चीजें मेरे जहन में रह गई थी, और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि वो जो किपलिंग का जो दौर था, मार्क ट्वेन का जो दौर था, फ्लोरा एनी स्टील का जो दौर था लेट 20th सेंचुरी का, और उसके बाद भी जब गांधी ने रेल की सवारी की, तो ये सारी चीजों को इकट्ठा एक जगह पे मुझे लाना था, और कहीं ना कहीं उस प्रेरणा ने उस बच्चे को मिली थी, उसने काफी मदद की मुझे।
आरूप, अगर हम बात करें भारतीय रेल की, तो औपनिवेशिक काल से आजादी के बाद तक भारतीय साहित्य, सिनेमा और यहाँ तक की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, वो सब भरी हुई हैं रेल की चर्चाओं से, रेल की कहानियों से। हम सबकी भी एक कहानी है रेल के साथ जुड़ी हुई, तो आपने इस किताब में क्या क्या संजोया है?
किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का इतिहास उसके देश के इतिहास और अदब से जुड़ा हुआ है।
जी,
अगर हम इंडियन रेलवे के कल्चर की बात करते हैं, उसके बायोग्राफी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो देश का ही बायोग्राफी एक तरह से मान सकते हैं। हालांकि ये एक इतिहास है भारतीय रेल का, ये एक ही इतिहास नहीं है, ये कई इतिहासों में से एक है, वैसे ही ये देश के कई इतिहासों में से आप एक मान सकते हैं उसको। इसमें जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि इसमें सिनेमा का जिक्र तो है ही, लेकिन सिनेमा से पहले लिटरेचर का जिक्र है, और उससे भी पहले पार्लियामेंट्री डिबेट्स का जिक्र है, चूंकि वही सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है रेलवेज का, चूंकि सबसे पहले व्हेन देयर वाज नथिंग देयर वाज द वर्ड, लाइक वी टॉक अबाउट द बाइबल ऑफ द वर्ल्ड, तो वो शब्द, वो वाणी, वो डिबेट, वो तर्क जो पार्लियामेंट में छिड़ा है ब्रिटेन में, वो चीजें 1840 के दशक से लेके 1850 और उसके बाद जब रेलवे के बारे में नॉन फिक्शन, रॉ फिक्शन लिखा जाना शुरू हुआ, वो चलते चलते सिनेमा में तब्दील हुआ, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स आने लगे, उसके बाद सिनेमा के भीतर ही काफी सारे नए गाने बनने लगे, और आजकल तो डॉक्यूमेंट्रीज का भी एक दौर चला है, हालांकि वो भी कहीं ना कहीं म्लान हो रहा है, कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है। तो एक आखिरकार एक हम ऐसे परिस्थिति में पहुंचते हैं जहां शायद रेलवेज का जिक्र थोड़ा बहुत लुप्त हो रहा है पॉपुलर कल्चर से, और कभी कभी देखते हैं कि अडेप्टेशन भी नए नए आते हैं। तो मोर ऑर लेस ये 4 या 5 कैटेगरीज हैं ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिनमें हमारे रेलवेज सीमित है। जैसे कि मैंने कहा, शुरू में 1840-50 से लेके आई थिंक टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जब हम इनफॉर्मली रेलवेज के बारे में बातें करते हैं, के काफी सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज के बारे में बातें करते हैं, जैसे कि चाय है, कंबल, ओढ़ने के कंबल है, की लॉक, उसके बाद ट्रंक, सूट केसेस वगैरह वगैरह, फल, ये सारी चीजें जो रेलवे से जुड़ी हुई हैं, ये सारे भी कहीं ना कहीं उसके एक्सटेंशन या रिप्रेजेंटेशन ही है।
भारतीय सिनेमा में, साहित्य में रेलवे का जो स्थान है वो सबसे ऊपर रखा गया है। अगर हम बात करें देवदास की, पुरानी वाली देवदास की जो फिल्म थी, उसमें रेल को कहीं भारत को जोड़ते हुए दिखाया गया है। इस बात को आप सही मानेंगे कि रेलवे ने जो काम किया है वो भारत को जोड़ने का काम किया है, ना सिर्फ ज्योग्राफिकल लेवल पर, पर एक राष्ट्रीय रूप से, जो हम नेशनलिस्टिक लेवल पे कहते हैं?
Entirely depends on us कि हम इसे एक पॉजिटिव मिथ की तरह ले या फिर एक नेगेटिव मिथ की तरह ले, यानी कि ये जो मौखिक कहानी है कि रेलवे ने हिंदुस्तान को जोड़ा है, ये अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत साफ सुथरे तौर से फैलाया है भारतवर्ष में, क्योंकि उन्होंने दो चीजें हमें दी, ऐसा हमें कहा गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक थी अंग्रेजी जुबान और एक था अंग्रेजी रेलवे, यानी कि जो बाद में इंडियन रेलवे में तब्दील हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि रेलवे ने हिंदुस्तान को जोड़ा, और सिनेमा ने जब हिंदुस्तान आजाद हो गया उसके बाद सिनेमा ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई इस जोड़ने को, इस गठबंधन को दर्शाने में, क्योंकि वही सिनेमा का कहीं ना कहीं एक रोल भी था। तो सिनेमा ने ये रोल अदा किया कि प्रेमियों को वो एक तरफ जोड़ने लगा, वो काफी सारे तबके के लोगों को एकजुट होने में मदद करने लगा। हालांकि आजादी से पहले, बल्कि 1850 और 60 के दशक में, खास करके जब रिफॉर्म्स रेलवे में हुए नहीं थे, इनफैक्ट टिल द एंड ऑफ द 1890s, जब तक कि बहुत सारे फैमिन्स हो चुके थे हिंदुस्तान में, रेलवे का रोल ही था हिंदुस्तान को बांटना, और रेलवे ने हिंदुस्तान को बहुत सताया। अंग्रेजों ने चाहा तो था कि हिंदुस्तान को जोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बांटने का काम किया, क्योंकि रेलवे में बहुत पैसे जाने लगे। रेलवे के जो टैक्स पेयर्स थे, जैसे आजकल टैक्स पेयर्स की बात होती है एजुकेशन के सेक्टर में और नेशनलिज्म और एंटी नेशनल डिबेट में, तभी भी टैक्स पेयर्स हिंदुस्तानी ही थे, और उनके टैक्स से रेलवे चलने लगे, उनके अपने अर्निंग से रेलवे टिकट्स खरीदे जाने लगे, और अंग्रेज अपने गुड्स हावड़ा से मैनचेस्टर पहुंचाने के प्रोजेक्ट में उन्होंने रेलवे को चलाया। वो कॉटन एक्सपोर्ट करना चाहते थे, वो इंडिगो एक्सपोर्ट करना चाहते थे, वो जूट, टोबैको और काफी कुछ और भी एक्सपोर्ट करना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने रेलवे बनाया। और उसके बाद जब वो लोगों के दिमाग में एक किस्म का डर, किस्म का टिरनी पैदा करना चाहते थे कि देखिए ये जो इमारतें हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये इतने बड़े लेवल के हो सकते हैं, इतने इतने खूबसूरत कहीं ना कहीं हो सकते हैं, और इतने डरावने भी हो सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के रूप में अंग्रेजों ने बनाया, हावड़ा स्टेशन कह लीजिए आप, वीटी विक्टोरिया टर्मिनस जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है आज कह लीजिए, ये काफी सारे स्टेशन उन्होंने कॉलोनियल स्टाइल में, गॉथिक आर्किटेक्चर में बनाया। तो रेलवे का रोल सिर्फ जोड़ने का नहीं था, रेलवे का रोल जोड़ने का हुआ जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। आपने बहुत सही फरमाया कि देवदास में देवदास ने वो भूमिका निभाई। आप अगर केएल सहगल का देवदास देखे या फिर दिलीप कुमार का देवदास देखे, खास करके दिलीप कुमार का, जो कि एक सोशलिस्ट फेज में सोशलिस्ट फेज में आता है, वो बिल्कुल वो रोल निभाता है। हालांकि उस रोल तक पहुंचने में हमें 100 साल लग गए थे, जोड़ने के लिए हमें 100 साल लगे, और उन 100 सालों में हम तो तोड़ते ही रह गए, थैंक्स टू द इंग्लिश।
अरुप, चलते चलते जरा बताएंगे कि भारतीय रेल की जीवनी में, जो सांस्कृतिक जीवनी है, उसमें आपकी पसंदीदा चीज क्या है और बात क्या है, और साथ में आपकी आने वाली पुस्तकें क्या हैं?
जी शुक्रिया अमित ये सवाल पूछने का। दरअसल ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा मेरे जीवन के लिए और इस किताब के लिए भी। भारतीय रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण चीजें मेरे जहन में जो रह गई हैं, मैंने आपको आर्थर कोनन डॉयल के बारे में बताया और उस बनारस के छोटे से टॉय ट्रेन के बारे में भी बताया, लेकिन इसके अलावा कुछ गाने हैं, कुछ फिल्मों के कुछ, जैसे कि आराधना का जो जाना है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को जो दर्शाता है
जी।
और इसके अलावा जो मेरे अपने निजी जिंदगी से जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जब मैं काउ बेल्ट में जब मैंने सवारी की है ट्रेन की, तो चाय वाले यहाँ पे चाय बेचा करते हैं नॉर्थ इंडिया में, यूपी में या बिहार में, और वो कहते हैं खराब से खराब चाय, तो वो मुझे बहुत लुभाता था, बहुत परेशान भी करता था कहीं ना कहीं। सो इट वाज अ वेरी इनएक्सट्रिकेबल यू नो ड्रीम लाइक थिंग व्हिच द टी सेलर्स वुड ट्राई टू अट्रैक्ट यू विद, और आपको मजबूर करते थे कि वो चाय सबसे खराब चाय आप पिए। इसके अलावा ट्रेन अलग अलग ट्रेन के अलग अलग खान पान होते हैं, अलग अलग पकवान मिलते हैं। कुछ ट्रेन में जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होते हैं 4 या 5 घंटों के, उसमें कभी कभी कॉलोनियल पकवाने अभी भी मिलती हैं, जैसे कलकत्ता से जमशेदपुर वाले लाइन में, या फिर मेरे ख्याल से आजकल दिल्ली से चंडीगढ़ के लाइन में भी उन्होंने शुरू किया है IRCTC ने, या उससे पहले जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे वो एक किस्म का कॉलोनियल रिवाज मेंटेन करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो भी लुभावना है। तो आई वुड से अ मिक्स ऑफ एलीट कल्चर एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज यू नो वेल diverse cultures
जी.
coming together on the trains, nothing could have been more inspiring than this for me. और इसके अलावा मेरे जो अगले कुछ projects हैं, एक तो एक छोटा सा इतिहास लिखने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान की, जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये इतिहास किसी और तरीके से कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे रेलवेज के इतिहास representations के थ्रू और बाकी artifacts के थ्रू बताया जा रहा था, यहाँ भी हिंदुस्तान का इतिहास कहीं और किसी और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताया जाएगा। और दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो एक नॉवल है, और वो कहानी हालांकि एक किस्सा है, हालांकि फिक्शन है, काल्पनिक है, लेकिन वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स के साथ डील करता है, और 1910-20 के बीच में सेट है वो हिंदुस्तान में, थोड़ा बहुत लंदन में और थोड़ा बहुत ब्रिटेन के बाकी हिस्सों में, और ये 3 या 4 बहुत ही अहम रियल लाइफ कैरेक्टर से डील करता है जो खुद भी लेखक थे। तो मेरा इरादा था कहीं ना कहीं कि लेखकों को साथ में एकजुट लेकर आना है एक कल्पना में, और कुछ ऐसे एपिसोड्स के बारे में लिखना है जो शायद कभी हुए नहीं, but they were very possible. I was trying to write about the possible improbabilities which history never witnessed really, but somebody had to do it, aur maine socha kyun na main ek koshish kar lu jaate jaate.
Arup, SBS Hindi mein baat karne ke liye, apna keemti samay dene ke liye bahut bahut dhanyawad.
Thank you so much. Bahut bahut shukriya.
Dekho rel bachcho ka khel, seekho sabak jawano, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआ है चारों, फिर भी ये गा रही है, नब में सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।